समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर। कार्यक्रम आज सवेरे में सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 22 मई 2024 की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर के हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं निखिल, मेरे साथ में है शेफाली सिंह। हेलो शेफाली।
हेलो निखिल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। Today being the International Day for Biodiversity, I would just like to remind our listeners that biodiversity starts in the distant past and it points towards the future. So it's an ongoing process and we all need to contribute. So today we bring you our forever exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein the next half an hour we'll bring you the latest in national and international news, metro city updates as well as some historical information related to this day, that is 22nd May 2024. So let's begin with the headlines.
जी हाँ, शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ में।
Campaigning for remaining two phases of Lok Sabha elections is in full throttle as top leaders hold marathon rallies in the poll-bound states. In Uttar Pradesh, star campaigners of different political parties will campaign for the sixth and seventh phase of elections. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will address political rallies in Basti and Shravasti constituencies. BJP leader and Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath will campaign in Jaunpur, Basti, Sultanpur, Siddharthnagar and Balrampur districts, while BJP leader and Chief Minister of Madhya Pradesh Mohan Yadav will campaign in Maharajganj, Kushinagar and Jaunpur. Bahujan Samaj Party Chief Mayawati will campaign in Sultanpur, while Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav will address a rally in Azamgarh district. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi yesterday said that INDI alliance is anti-women and they oppose reservation for women. Addressing a women-only gathering in his parliamentary constituency, Varanasi, the PM said that women were not safe during the regime of Samajwadi Party and Congress, but now under Yogi Adityanath's leadership in UP, women are more safe and secure. He will address two more rallies in Uttar Pradesh today. On the other hand, Congress President Mallikarjun Kharge addressed a press conference in Chandigarh yesterday. He said Haryana and Punjab are considered quite prosperous, but still unemployment and inflation is at its peak in these states. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav also addressed a political rally in Bhadohi in support of TMC candidate Lalitesh Tripathi yesterday. He said that BJP is not going to win even 140 seats in the country.
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर में भारी मतदान हो रहा है और यह लोकतंत्र का मानक बन चुका है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर में हुए मतदान ने 30 से 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुद्रास्फीति पर श्री मोदी ने दावा किया कि अन्य देशों की तुलना में भारत में महंगाई नियंत्रण में है। श्री मोदी ने कहा कि दूसरे देशों में किसानों को 3,000 रूपये प्रति बोरी यूरिया मिल रहा है, जबकि भारत में किसानों को यूरिया केवल 300 रूपये में ही मिलता है।
The Aam Aadmi Party has come down on BJP for allegedly using Prevention of Money Laundering, PMLA law, as a weapon against the opposition. Briefing media in New Delhi yesterday, senior AAP leader Atishi said that the alleged liquor scam in Delhi is a conspiracy of the BJP to break the Aam Aadmi Party. Expressing displeasure at the Delhi High Court's rejection of the bail plea of senior AAP leader Manish Sisodia, she alleged that the BJP government is using the central investigating agencies to hatch a political conspiracy. She alleged that the entire case is based on statements taken under pressure.
भारत में विभिन्न दूतावासों के राजनयिकों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ओडिशा के संबलपुर के दौरे पर है। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की प्रत्यक्ष जानकारी देना है। ये यात्रा कल संपन्न होगी। प्रतिनिधिमंडल में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के राजनयिक शामिल हैं।
Chief of Defence Staff CDS General Anil Chauhan has said that integrated theatre commands will lay the foundation for catapulting the armed forces into the next orbit of military preparedness and war fighting. Addressing a function on jointmanship, the way ahead, in New Delhi yesterday, General Chauhan termed jointness and integration as prerequisites to the creation of functional integrated theatre commands. He said the creation of such commands will allow greater focus of the operational commander to matters of security. The CDS said the theatre commands will not be an end state but the beginning of the next set of reforms.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक चार्टर के कार्यान्वयन की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह समृद्ध और शांतिपूर्ण पड़ोस के लिए भारत की वचनबद्धता की पुष्टि करता है। यह भारत की पहले पड़ोसी और एक्ट ईस्ट नीतियों के संश्लेषण को भी दर्शाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ईरान की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे राजकीय कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन सभी का 19 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था।
And in sports, in the FIH Pro Hockey League, the Indian men's and women's hockey team will begin the first half of the European leg in Antwerp, Belgium today. Both the men's and women's teams will play against Argentina this evening. The women in blue, led by Salima Tete, will face the Argentine women's team at 3:45 p.m., while the men's team, led by Harmanpreet Singh, will start their campaign at 6 p.m. Currently, the Indian men's team stands third in the Pro League points table with 15 points from 8 games, while the women's team is sixth with 8 points from 8 matches.
आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। एलिमिनेटर का विजेता कल दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलेगा। फाइनल मैच रविवार को होगा। विश्व आर्थिक मंच WEF के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमरीका इस सूची में शीर्ष पर है। दक्षिण एशिया की निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सर्वोच्च स्थान पर है। इससे पहले 2021 में प्रकाशित सूचकांक में भारत 54वें नंबर पर था। 7 के समग्र सूचकांक अंक पर जहां 1 सबसे खराब है और 7 सबसे अच्छा है, भारत ने 4.25 अंक हासिल किए हैं। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। और श्रोताओं, अब समय हो चला है प्रमुख महानगरों यानी कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु तथा हैदराबाद से जुड़ी हुई खबरों को जानने का। तो शेफाली, कहां से शुरुआत कर रहे हैं हम?
जी निखिल, हम शुरुआत करेंगे चेन्नई से। द आईआईटी मद्रास हैज एस्टैब्लिश्ड अ न्यू इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एटोमिस्टिक मॉडलिंग एंड मटीरियल्स डिजाइन टू स्टडी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स टू डेवलप न्यू मटीरियल्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज, न्यू पॉलीमर्स फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड न्यू मटीरियल्स फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी। द सेंटर विल एम्प्लॉय कॉम्प्यूटेशनल टेक्निक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड एडवांस थियोरेटिकल मेथड्स टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स। And in another news, the International Institute of Tamil Studies, Chennai, has invited applications for the 5-year integrated postgraduate in Tamil. With the approval of the state government, the Department of Tamil Studies at Thanjavur have jointly announced the introduction of the 5-year integrated postgraduate studies. And now in Bengaluru, dengue cases in Bengaluru have jumped by 59% as against the previous year for a period between January to May. The Brihat Mahanagar Palike BBMP has attributed the surge to enhanced reporting of the cases. According to the data shared by the BBMP, this year till May 15, the city has recorded 932 cases, while the number of cases from January to May in 2023 was 583. However, the cases are less compared to 2020. Experts say that the BBMP's lack of preparedness and wrong approach towards handling vector-borne disease are the key reasons for the increase in cases. So people in Bengaluru are advised to be cautious, don't venture out unprotected, wear full sleep clothes, and please use all the mosquito repellents that you can. And in Hyderabad, Telangana police have recovered as many as 30,049 mobile devices ever since the Central Equipment Identity Register portal was launched in April last year. This is the second highest in the country. The CEIR portal was developed by the Department of Telecommunications to curb the menace of mobile theft and counterfeit mobile devices and was started on a pilot basis in Telangana state in April last year. In Telangana, the portal is operated in all 780 police stations of police units of the state. due to the efforts made by the then ADG CID Mahesh Bhagwat and current ADG CID Shikha Goyal, over 30,000 lost or stolen mobile devices were recovered during the last year. Of them, the last 1,000 were recovered in 9 days and handed over to complaints. An official release stated that on average, 76 mobiles are recovered per day in the state. The maximum recoveries have been made by Hyderabad Commissionerate, followed by Saidrabad Commissionerate, Rachakonda Commissionerate and Warangal Commissionerate. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to you, Nikhil.
जी हाँ, दिल्ली पुलिस में 1266 नए कांस्टेबल शामिल किए गए हैं। दिल्ली के वजीराबाद में इन कांस्टेबलों के नए बैच के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त एस के गौतम ने इस पासिंग आउट परेड की सलामी ली। उन्होंने सभी नवनियुक्त कांस्टेबलों को बधाई देते हुए उन्हें समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन सभी कांस्टेबलों को नए आपराधिक कानूनों, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम के साथ अन्य कौशलों में भी प्रशिक्षण किया गया है। इनके प्रशिक्षण में शारीरिक फिटनेस एक महत्वपूर्ण पहलू था। राजधानी में नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी के द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप 3 जून तक चलेगा। एनबीटी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वसंत कुंज में चल रहे इस समर कैंप में भाग लेने के लिए 1000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। 15 दिन तक चलने वाले इस समर कैंप के लिए बच्चों में 100 से अधिक रचनात्मक कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहानी वाचन, पेपर क्राफ्ट, कठपुतली का खेल, पत्र लेखन, थिएटर, खिलौने बनाना, योग और खेल विज्ञान में विज्ञान शामिल है। इसके अलावा 9 से 14 वर्ष के बच्चों को करियर काउंसलिंग भी की जाएगी और उन्हें साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। राजधानी में 2 लोगों ने अंगदान कर 8 लोगों को नई जिंदगी दी है। इसके अलावा 4 लोगों को नई रोशनी भी मिली है। इनमें एक मरीज 22 साल का और दूसरा 27 साल का था जिसने अपना अंगदान किया। जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के अनुसार पहली बार 2 लोगों के एक साथ अंग निकाले गए और इस प्रक्रिया में एम्स तथा अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल थे। एम्स में भर्ती मरीजों को 1 हृदय, 1 लीवर, 3 किडनी और 4 कॉर्निया प्राप्त हुए। वहीं भारतीय यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में भर्ती मरीज को 1 लीवर और 1 किडनी प्राप्त हुआ है। दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी फर्जी कंपनी के माध्यम से स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए लोगों से पैसे लेते थे। इन्होंने कंपनियों में निवेश करने के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए लोगों से लिए हुए थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 250 सिम कार्ड, 84 मोबाइल फोन और 28 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत योग अभ्यास शुरू किया है। ये 30 दिन तक चलेगा। संस्थान के महानिदेशक तनुजा नेसारी ने कहा कि आयुर्वेद और योग आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी से योग के सिद्धांतों को अपनाकर संतुलित जीवन जीने की अपील की। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मा कुमारी शिवानी ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। उन्होंने शीघ्र उपचार में सकारात्मक ऊर्जा की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग रही। राज्य विद्युत वितरण केंद्र के अनुसार कल दोपहर शहर में 7717 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जो अब तक की सबसे अधिक है। इससे पहले जून 2022 में 7695 मेगावाट बिजली का उपयोग किया गया था। इस समय दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना भी व्यक्त की है। और अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 93% से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा 12 या उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल परिणाम जारी किए, जिसमें कुल मिलाकर 93.37% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 21 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित परीक्षाओं में 15,13,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और 95.44% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और लड़कों से 3.84% आगे रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस तथा अजीत पवार ने सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। मुंबई के घाटकोपर में कल कम से कम 39 राजहंस मृत पाए गए। मुंबई के नागरिक निकाय के अनुसार पक्षियों की मौत मुख्य रूप से एमिरेट्स विमान की चपेट में आने से हुई, जबकि घटना के बाद विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। मौत का सही कारण निर्धारित करने के लिए मृत पक्षियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुंबई के नागरिक निकाय, वन विभाग और हवाई यातायात नियंत्रण की टीमों ने घाटकोपर के पंतनगर इलाके में तलाशी अभियान चलाया और ये शव बरामद किए। और अब कोलकाता से खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। वे कांथी लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे। बाद में वे पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में घाटल, पुरुलिया और बांकुरा में 3 सार्वजनिक बैठकों को भी संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में पार्टी के कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्रों के समर्थन में सार्वजनिक बैठकों में भाग लेंगे। बाद में पार्टी के 12-7 लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में एक रोड शो में भी शामिल होंगे। तो ये थी महानगरों से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें। और शेफाली, अब समय हो चला है हाल मौसम जानने का। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसलिए ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव बहुत जरूरी है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत जरूरी है। उधर मुंबई की हम बात करें तो आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता की बात करें तो वहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शेफाली, अन्य महानगरों में आज मौसम कैसा रहने वाला है?
जी, कास्टिंग एन आई एट द वेदर इन द साउथ, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद 1 or 2 स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी 22 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू ऑल्सो हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म। द टेम्परेचर विल हवर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 26 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस। सो पीपल आर एडवाइज टू ब्रेस योर सेल्फ अगेंस्ट द ह्यूमिडिटी।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने के, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज के दिन कौन सी प्रमुख घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई थी। तो आज है 22 मई, तो आपको ये बताया जाए कि आज के दिन वर्ष 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रेलिजली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी।
Also, today we join the global community in observing the International Day for Biological Diversity, a United Nations sanctioned day dedicated to promoting biodiversity issues. Biodiversity is akin to a jigsaw puzzle where each piece is crucial for the whole picture. Changes in an ecosystem such as temperature shifts can significantly affect what plants and animals can thrive there. As human populations grow, we increasingly encroach upon and sometimes overtake these ecosystems, leading to a decline in their rich biodiversity. It is imperative that we reevaluate our relationship with nature and utilize its resources judiciously and consciously. Despite our technological advancements, we remain utterly dependent on healthy and vibrant ecosystems for essentials such as water, food, medicines, clothes, fuel, shelter, and energy. This dependence underscores the importance of respecting, protecting and repairing our biological wealth.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये जो जैव विविधता दिवस है, इसे संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले प्रारंभ किया था और 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता सम्मेलन के अनुसार जैव विविधता धरातलीय, महासागरीय और अन्य जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित है या फिर उससे संबंधित जो तंत्र हैं उनमें मिलता है। और आपको जानकर के ये खुशी होगी कि विश्व की समृद्ध जैव विविधता वाले 17 देशों में भारत भी शामिल है और भारत में विश्व की लगभग 70% जैव विविधता उपलब्ध है और विश्व के कुल 25 जैव विविधता के सक्रिय केंद्रों में से 2 क्षेत्र पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत में ही हैं।
And now let's have a look at the history of this day. In 1936, Lord Brabourne laid the foundation stone of Brabourne Stadium in Bombay.
वर्ष 1915 में आज के दिन ही पहले विश्व युद्ध के लिए इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
1953, Sherpa Tenzing Norgay of Darjeeling and Edmund Hillary of New Zealand were the first to conquer the Mount Everest, which was a matter of great pride for the entire world.
और वर्ष 1963 में आज के दिन ही भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी.
In 1961, Gyanpeeth Award was instituted and the first award was given in 1965. This award is given for the best creative literary writing by any Indian citizen in any of the languages included in the 8th schedule of the Indian Constitution. The award carries a cash prize of Rs. 2.5 lakh, a citation and a bronze memento.
और श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1988 में भारत में स्वदेश में ही विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का सफल परीक्षण किया था.
In 1963, Rohini glider became the first to successfully fly at Kanpur, and in 1989, IRBM Agni missile launched successfully from Chandipur, Odisha. In 1992, India launches its Agni rocket.
और श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 1990 में उत्तरी और दक्षिणी यमन के विलय के साथ ही संयुक्त यमन गणराज्य की शुरुआत हुई थी और वर्ष 2007 में आज के दिन ही गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे का अबेल पुरस्कार दिया गया था.
In 1996, Ravi Shastri appointed UNICEF's National Ambassador for Children.
और समय हो चला है अब जानी मानी हस्तियों को याद करने का. तो श्रोता आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है श्रीपाद अमृत डांगे की. वे भारत में समाजवादी विचारों के प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने द सोशलिस्ट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया था और उन्होंने मजदूरों में चेतना जागृत की तथा अपने हितों के लिए संघर्ष करने के लिए उन सभी को प्रोत्साहित किया. श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी व लेनिन नाम की पुस्तक भी लिखी थी जिसमें इन दोनों नेताओं और उनके विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है. आज ही पुण्यतिथि है गोविंद चंद्र पांडे की. वे 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृत के ज्ञानी और सौंदर्य शास्त्री थे. वे संस्कृत, हिब्रू तथा लैटिन जैसी अनेक भाषाओं के असाधारण विद्वान, कई पुस्तकों के प्रसिद्ध लेखक और हिंदी कवि भी थे. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, बौद्ध दर्शन, साहित्य, इतिहास लेखन और दर्शन में गोविंद चंद्र पांडे को विशेषज्ञता प्राप्त थी. अनेक चर्चित किताबों और सैकड़ों शोध पत्रों के लेखक थे और वर्ष 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
Friends, today is also the death anniversary of Langston Hughes, an American poet, social activist, novelist, playwright and columnist from Joplin, Missouri. One of the earliest innovators of the literary art form called jazz poetry, Hughes is best known as the leader of the Harlem Renaissance, and here is this little poem by him which is world-renowned, I Too by Langston Hughes. I too sing America, I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh. They'll see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. Today we also celebrate the death anniversary of Victor Marie Hugo, a French romantic writer and politician. His most famous works are the novels The Hunchback of Notre Dame and Les Misérables. In France, Hugo is renowned for his poetry collections such as Les Contemplations and La Légende des Siècles. Here are another few lines from his poem Tomorrow at Dawn. Tomorrow at dawn, at the moment when the day breaks, I will go. You see, I know that you're waiting for me. I'll watch neither the gold of the evening setting sun, nor the faraway sailboats descending upon Hafler. And when I arrive, I'll put on your grave a bouquet of green holly and heather in bloom.
और श्रोताओं को बता दें कि आज पुण्यतिथि है रेवा प्रसाद द्विवेदी की. वे काशी के प्रकांड विद्वान थे. उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े थे. रेवा प्रसाद द्विवेदी साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे. वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख भी रहे थे. और आपको बता दें कि उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी. इनमें से तीन महाकाव्य अद्भुत हैं. शताब्दी का सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव, जो 103 सर्ग का है, वो उन्होंने लिखा था. पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी ने दो नाटक और 20 महाकाव्य लिखे. और आपको बता दें कि उन्हें महाकवि नाटककार भी कहा जाता है. और काशी विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने कई सारे काम किए थे और उन्हीं सारे कामों के लिए उन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. आपको बता दें कि नवीन साहित्य शास्त्र नवीन की स्थापना में पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान रहा, उसके लिए उन्हें 1979 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से विश्व भारती सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया. इसके अलावा राष्ट्र की तमाम संस्थाओं ने उन्हें कई बार पुरस्कारों से पुरस्कृत किया. और साहित्य शास्त्र के आज जो भी विद्यार्थी पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी की परंपरा से जुड़े रहे हैं और उन्हें आधुनिक महाकवि कालिदास की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था क्योंकि उन्होंने सैकड़ों शोध पत्रों ग्रंथों और पुस्तकों का संपादन किया था.
And today is also the birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy, an Indian reformer who was one of the founders of the Brahmo Sabha in 1828, the precursor of the Brahmo Samaj, a social religious reform movement in the Indian subcontinent. His influence was apparent in the fields of politics, public administration, education and religion. He was known for his efforts to abolish the practices of sati and child marriage. Roy is considered to be the father of Indian Renaissance by modern historians. In 1988, Doordarshan serial Bharat Ek Khoj, produced and directed by Shyam Benegal, also picturized the full one episode on Raja Ram Mohan Roy. Let's hear few dialogues from that.
हम यहाँ हत्या के विषय में बात करने आए हैं, मनुष्यता के विषय में. हम यहाँ ये सवाल उठाने आए हैं कि क्या 6-7 साल की भोली भाली लड़कियों को उनके 70 साल के बूढ़े पति के साथ चिता पर चढ़ा देना चाहिए. दुनिया का कोई धर्म, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता, निश्चित हिंदू धर्म भी नहीं. मैंने हिंदू धर्म के ग्रंथों और शास्त्रों को कई बार पढ़ा है और उनका अनुवाद उन लोगों के लिए किया है जिनको सदियों से एकजुट पर विश्वास करने के लिए कहा जाता रहा है. सती प्रथा सीधे सीधे हत्या है, काफी समय से चली आ रही है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.
और श्रोता, आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है. उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू जैसी भाषाओं का अध्ययन किया और हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सूफी धर्म का गंभीर अध्ययन किया था. हालांकि अंग्रेजी भाषा और सभ्यता से वे काफी प्रभावित थे और उन्होंने धर्म सुधार, समाज सुधार का जो लक्ष्य निर्धारित किया अपने लिए, उसी में आगे बढ़ते रहे. और उनका मानना था कि ईश्वर में एकता है और ईश्वर को एक ही नाम से जाना जाना चाहिए. उन्होंने कई लेखों और पुस्तकों को प्रकाशित कराया और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया था. आज भी बहुत सारे लोग उनके विचारों का समर्थन करते हैं और ब्रह्म समाज के माध्यम से उनके विचारों को आगे बढ़ाते भी रहते हैं. और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं जाने माने संगीतकार राम लक्ष्मण को. वे हिन्दी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे कि मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में अपने संगीत का जादू लोगों तक पहुंचाया था. आइए सुनते हैं उनकी ये रचना.
दिल दे के दर्दे मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है. मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है. मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है.
श्रोता, आपको बता दें कि राम लक्ष्मण ने करीब 150 फिल्मों में संगीत दिया था. हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मराठी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था. और आपको बता दें कि मराठी फिल्म मेकर और अभिनेता दादा कोंडके ने राम लक्ष्मण को अपनी फिल्म पांडु हवलदार के उसकी फिल्म के लिए ही बतौर संगीतकार राम लक्ष्मण को साइन किया था और इसके बाद उन्होंने सूरज बड़जात्या की अनेक फिल्मों में हिट गाने दिए हैं. आइए सुनते हैं उनकी दूसरी रचना.
Today is also the birth anniversary of Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, a British writer and physician. He created the famous character of Sherlock Holmes in 1887 for A Study in Scarlet, the first of 4 novels and 56 short stories about Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are a milestone in the field of crime fiction and loved by all. We also celebrate the birthday of Stephen Patrick Morrissey, an English singer and songwriter who came to prominence as the frontman and lyricist of rock band The Smiths. Let's hear a song by The Smiths, This Charming Man. And because of paucity of time, we'll be moving ahead and...
और श्रोता, आपको बता दें कि आज जयंती है मदन लाल मधु की. वे हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक स्थित निर्माताओं में से एक रहे हैं. मॉस्को के प्रमुख प्रकाशन गृह प्रगति एवं राधुका प्रकाशन में लगभग 4 दशकों तक संपादक और अनुवादक के पद पर रहते हुए उन्होंने 300 से अधिक क्लासिक रूसी पुस्तकों जिनमें से पुश्किन, मायकोस्की, तोल्स्टॉय, गोर्की, चेखव, तुर्कनेव जैसी कई काल्याई साहित्य शामिल है उनका हिन्दी में अनुवाद किया और भारतीय पाठकों के लिए उपलब्ध कराया था. आपको बता दें कि प्रचुर मात्रा में रूसी लोक साहित्य, बाल साहित्य के लेख, संकलक और कई ऐसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी रूसी शब्दकोश का निर्माण किया जो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए रूसी सीखने का मार्ग प्रशस्त करता है।
Today we celebrate the birthday of Novak Djokovic, a Serbian professional tennis player who's currently ranked world number one in singles by the Association of Tennis Professionals ATP. He started tennis at the age of four after his parents gave him a mini racket and a soft foam ball, which his father said became the most beloved toy in his life.
और श्रोताओं, समय हो चला है कि आप सभी से अनुमति ली जाए, तो आपके एक बेहतर दिन के लिए हम आप सभी से इजाजत लेते हैं। अनुमति दीजिए निखिल और शेफाली को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर संपन्न करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।